खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम खुदावन के कलाम में से सीख रहे हैं, इफ़सियों के नाम पालूस उसूल का ख़त उसका चार बाप उसकी तीसवीं आयत से, वहाँ पर खुदा का बंदा पालूस कहता है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। हमने कल देखा था कि मोहर जो पाक रूह की मोहर है वो किस बात की अलामत है, उसमें क्या हमें जमानत या हमें हफाजत मिलती है। चाहे पुराने अहदनामा के किसी बादशाह को देख ले, जब भी वो कोई किसी दस्तावेज को लिखता था तो उस पर उसकी मोहर की जाती थी, और जिसके नाम पर होती थी वही उस दस्तावेज को खोलता था। दानियल नबी के सहीफा को देखते हैं तो वहां पर भी खुदावन खुदा कहता है कि इन तमाम बातों पर सरबंद मोहर कर दे ताकि जब वक्त आएगा इसे खोला जाएगा। मकाशवा की किताब में भी हमें जिक्र मिलता है कि खुदावन यसु मसीह वो वाहद शख्सियत है, वाहद ऐसा कामिल और वाहद ऐसी हस्ती आसमान और ज़मीन में पाई जाती है जो उन मोहरों का खोलने वाला बना, उन सात मोहरों का जिनका जिक्र हमें मिलता है। सो जब भी हम मोहर को देखते हैं रूमी दौर के मुताबिक, जब यसु मसीह की कब्र पर मोहर की गई तो इस बात की अलामत थी कि उनका इख्तियार है, इस इख्तियार को कोई तोड़ नहीं सकता। सो जब हम देखते हैं कि खुदा का बंदा पालूस कहता है कि हम सब पर मखलसी के दिन के लिए यानी कि निजात के दिन तक, जब तक यसु मसीह ज़मीन पर अपनी बादशाही के लिए नहीं आता, हम पर पाक रूह की मोहर लगी है, हमें महफूज किया गया है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि हम उसकी मलकियत हैं, हम उसके लोग हैं, उसके इख्तियार के मुतहद कोई उसके इख्तियार को तोड़ नहीं सकता। और सबसे बड़ी जो हौसले की बात वो ये है कि हमने सीखा था कि जिस दिन हम यसु पर ईमान लाते हैं, खुदा का पाक मौदे रूह की, खुदा के पाक रूह की मोहर हम पर लगती है। वैसे ही जैसे पुराने अहदनामा में हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं, खासल खास अय्यूब की ज़िंदगी, कि इब्लीस ने कहा कि अपनी बाड़ को इसके गिर से हटा तब मैं इसे नुकसान पहुंचाने के काबिल होऊंगा। दूसरे लफ्ज़ों में खुदावन कादरे मुतले, खुदा मुझे इजाज़त दे अपनी हफाजत को, अपनी उस मोहर को, अपनी उस इख्तियार की बाड़ को जो तूने इसके गिर्द लगाई है इसे हटा, तो फिर मैं इस काबिल होऊंगा कि इसे दुख दे सकूं। सो मोहर बहुत सी मुख्तलिफ खुदा की नेमतों बरकात को और ख़ास कर खुदा की हफाजत की क्या करती है, जमानत देती है। और इसीलिए खुदा का बंदा पालूस रसूल दूसरा करंथियों उसका दो बाप उसकी 22वीं आयत में ये बात कहता है ईमानदारों से, कलीसिया से, जिसने यानी खुदावन खुदा ने हम पर मोहर भी की और बयाने में रूह को हमारे दिलों में डाला, बयाने में रूह को हमारे दिलों में भेजा, बयाने में रूह को दिया। सो पाक रूह वो आने वाली तमाम नेमतों बरकात का उन तमाम वादों का जो खुदावन खुदा ने किए हैं, पाक रूह एक बयाना है, बयाने के तौर पर हमें दिया गया है कि मैं जो वादा कर रहा हूँ ये दुरुस्त और सच है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं होगी। जब हम किसी के साथ कोई समझौता या कोई फैसला या किसी चीज़ को ख़रीदने से पहले बात करते हैं तो बयाना दिया जाता है। अगर हम अपनी बात से फिरेंगे तो झूठे भी ठहरेंगे, हमारा किरदार भी बुरा ठहरेगा और हमारी ज़मानत भी जाती रहेगी। सो पाक रूह हम सबको क्या मिला है, बयाने के तौर पर मिला है। खुदा कहता है कि पाक रूह मैंने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम इस बात से वाकिफ रहो कि ये मेरी तरफ से सच्चा कॉल है। सो पाक रूह की मोहर हर उस ईमानदार बेटे और बेटी पर लगी हुई है जिसकी एक और सिफत है कि अबलीस हमारे अंदर घुस नहीं सकता, बदरू हमारे अंदर बसेरा नहीं कर सकती, खासल खास ईमानदारों के अंदर। यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान घुस गया, लेकिन हमारे अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि हम पर पाक रूह की क्या लगी है? मोहर लगी है। सो इसलिए इस मोहर को याद रखते हुए, इस सच को याद रखते हुए, मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने कल ये बयान दिया जो कि बहुत दफ़ा पचाने के लिए मुश्किल होता है, कि खुदा सच्चा है। खुदा सच्चा है ना जी? क्या कभी खुदा झूठ बोल सकता है? किसी भी वादे में वो बदल सकता है? तो अगर खुदा सच्चा है, तो कल मैंने ये कहा था कलाम खुदा के इख्तियार से, कि खुदा अगर सच्चा है तो वो झूठ नहीं बोल सकता। तो इसमें हम ये सच देखते हैं कि खुदा ने जो हमेशा की जिंदगी का वादा किया है, उसे तब्दील नहीं कर सकता। अबलीस बदल जाएगा, हम बदल जाएंगे, हम झूठ बोल सकते हैं, खुदा झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए हमारा खुदा सच्चा है, और जो कुछ वो कहता है सच्चा है। इसलिए आए देखें उस सच्चे खुदा के वादे को, कि उसकी मोहब्बत से खुदा भी खुद अपना मुंह फेर नहीं सकता, खुदा भी अपने कौल से बदल नहीं सकता। अगर खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, बावजूद बनी इसराइल कौम की तमाम नाकामियों, तमाम बुराइयों, तमाम कह सकते हैं कि बुत प्रस्ती के बावजूद खुदा का वादा कायम है। बनी इसराइल कौम ने हर तरह की बुत प्रस्ती की, बदी की, नाकामी में, बदाई में, हर तरह के हालात का सामना किया, हजारों हजारों खुदाओं का चुनाव किया यीशु मसीह को, इसराइल के खुदा को रद्द करके, लेकिन खुदा ने अपना वादा नहीं बदला। इसलिए खुदा सच्चा है। मैं झूठ बोल सकता हूं, आप झूठ बोल सकते हैं, और कह सकते हैं कि हम झूठ बोलते हैं बातों बातों में, बातों बातों में हम झूठ बोलते हैं। खुदा अनजाने में भी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए रोमियो 8 बाप उसकी 31वीं आयत से, खुदा का बंदा पालूस रसूल ईमानदारों की हौसला अफजाई, तसल्ली उनकी जमानत के बारे में, कि तुम जिस खुदा की इबादत करते हो उसमें तुम्हें क्या कुछ हासिल है। पालूस कहता है, पस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? कौन सी बातें? अगर हम पिछले 7-8 बापों को पढ़ें तो वो तमाम उन बातों की बाबत बात कर रहा है। अगर हम सिर्फ 8वें बाप को देखें तो वो 8वीं बाप की पहली आयत में कहता है कि पस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। जो यीशु मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। ये कौन सी सजा है? दूसरी मौत। बहुत दफ़ा सुनने में आता है पादरी साहबान कहते हैं कि जी, अगर आपने वक्त पर दायकी नहीं दी तो आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। झूठ है। पालूस कहता है, पास इन बातों की बाबत हम क्या कहें? जब वक्त मिले तो इस 8वें बाप को पढ़कर देखें कि कितनी बरकत है कि हमें गुलामी की रूह नहीं मिलगी, बल्कि खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक मिला है, जिसे हम ले पालक खुदा के बेटे और बेटियां कहते हैं। और फिर ना तक यहां तक बात रुक जाती है। पालूस कहता है कि पाक रूह खुद हमारी शिफायत करता है, जैसे वकील वकालत करता है जज के सामने, जब मुलजम को बोलने नहीं आता, जवाब नहीं देने आता, वैसे ही खुदा का पाक रूह हमारी क्या करता है? शिफायत करता है। आगे 31वीं आयत, ये सवाल पूछता है, पास इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? कोई मुखालिफ हो सकता है? हो भी जाए तो कुछ भी कर नहीं सकता। यूसुफ की मुखालफत में हालात, उसके भाई और माहौल था, लेकिन सादा तौर पर खुदा उसकी तरफ था तो कोई भी मुखालफ टेक नहीं सका। इसका हरगिज मतलब नहीं कि मुखालफत नहीं होगी, मुखालफत होगी। जिसे यीशु मसीह की मुखालफत हुई, हमारी भी मुखालफत होगी, लेकिन क्या वो मुखालफ कायम रहेंगे? हरगिज नहीं। अगर कोई मुखालफत करेगा भी तो क्या है आगे लिखा, जिसने खुदा ने अपने बेटे को अपने बेटे ही को दरेग ना किया, बल्कि हम सब की खातर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। दूसरा सवाल पालूस कहता है कि खुदा जिसने अपने रहम की दौलत के बायस यसु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो हमसे किस तरह कोई दूसरी नेहमत बाज रख सकता है। ये झूठ अबलीस बार बार बोलता है, जैसे बाग एदन में, खुदा नहीं चाहता कि तुम खुदा की मानत बनो हवा। यही झूठ था ना शैतान का, खुदा नहीं चाहता कि जिस रोज तुमने इस फल में से खाया तुम्हारी आंखें खुल जाएं। यहां पर पालूस क्या कहता है कि खुदा जिसने अपना बेटा सबसे उम्दा तोहफा दे दिया, वो किस तरह दूसरी नेहमत को हमसे बाज रख सकता है। हर किस नहीं, वैसी जैसी खुदा ने मोहब्बत यसु मसीह से की, आपसे करता है। जब खुदावंद यसु मसीह की इब्तदाई जमीनी जिंदगी का आगाज हुआ तो आसमान से एक आवाज आई थी। क्या आवाज आई थी? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। क्या आप यकीन करेंगे कि बाइबल मुकद्दस में वही सेम महावरा खुदावंद खुदा ईमानदारों के लिए कहता है कि तुम मेरे अजीज लोग, मेरे अजीज फरजंद हो। खुदा मोहब्बत में तरफदारी नहीं करता। खुदा ने जैसी मोहब्बत यसु मसीह से की, वैसी ही आपसे करता है। उसमें एक रत्ती की भी कमी कमजोरी नहीं है। और कभी भी ना कहें कि पादरी फैसल से खुदा ज्यादा मोहब्बत करता है, उसकी आवाज को ज्यादा सुनता है। खुदा जितनी मोहब्बत मुझसे करता है, आपसे भी करता है। इसीलिए खुदा तरफदारी का खुदा नहीं। 33वीं आयत क्या कहती है? खुदा के बरगजीदों पर कौन नाजिश करेगा? एक करता है अबलीस। जब भी वो नाजिश के लिए खुदा के तख्त के सामने जाता है, खुदा उन खुदा देखता है कि फलां बेटी फलां बेटा यसु मसीह में पाक साफ किए गए हैं। अबलीस शर्मिंदा होकर अपनी अल्जामों को, अपनी तमाम अमलामत की बातों को उठाकर वापस आ जाता है। पालूस सवाल करता है, खुदा के बरगजीदों पर कौन नाजिश करेगा? क्या हम यकीन करते हैं कि हम खुदा के बरगजीदा हैं? जी हाँ। बरगजीदा एक और लफ्ज है रास्तबाज के लिए, ईमानदार के लिए, खुदा के लिए मखसूस किए हुए बंदे और बंदी के लिए। हम खुदा के क्या हैं? बरगजीदा। सबसे बड़ा जो शैतान का झूठ है वो ये है, वो हमसे और बहुत दफा कलीसियाओं से बोलता है, तुम खुदा के बरगजीदा नहीं। अबलीस कौन है कि जो खुदा के कलाम को बदलने की कोशिश करे? सबसे बड़ा जो मसला वो ये है कि हम उसका यकीन करते हैं इससे ज्यादा खुदा का यकीन करने की बजाय। हम अबलीस की बातों पर बहुत ज्यादा गौर करते हैं बजाय के खुदा की बातों पर। हम अबलीस के फरेब में जल्दी आ जाते हैं बजाय के खुदा के उस सच को मान लेने से। इसलिए पालूस कहता है कि खुदा के बरगजीदों पर कौन नाजिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रासबाज ठहराता है। अगर खुदा आपको रासबाज, मुझको रासबाज कहता है, तो अबलीस के पास कोई है कुव्वत कि वो हमें नारास कहे? और किस नहीं। जब खुदा हमको सच्चा, जब खुदा हमको अपनी दुल्हन, जब खुदा हमको अपने बेटे और बेटियां कहता है, तो अबलीस का कोई हक नहीं कि हम, अबलीस का कोई झूठ भी हमें इससे गुमराह नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम सबका अपना चुनाव है। जैसे यशुआ ने कहा कि आज के दिन चुनाव करो कि तुम किसका यकीन करोगे, उन देवी देवताओं का जिन पर, जिनकी इबादत को, प्रस्तुति को, बुतों को, बनाए हुए बछड़ों को और फरौन की सूरत को तुम्हारे बाप दादा ने समंदर के पार पूजा की, या फिर उस जिंदा खुदा की जिन्हें, जिसने तुम्हें जिंदगी की सांसें बख्शी। खुदा हमें रासबाज ठहराता है, इसे ना मैं बदल सकता हूं तो ना कोई और बदल सकता है। अगर हम यसु मसीह पर ईमान रखते हैं तो कोई भी इस सच को बदल नहीं सकता। चाहे मैं कितने भी हवाले निकाल कर आपको, आपके हौसले को, आपके ईमान को तोड़ने की कोशिश करूं, ये अबलीस का काम है। बाकी बातों के बारे में तो बाद की बात है। अगर आपकी कोई रासबाजी की ज़िंदगी, यानी कि आपके ईमान आपके रासबाज होने के बारे में कहे कि बाइबल ये कहती है, तो जान लें बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि रासबाज ईमान से जीता रहेगा। और रासबाज हम किस तरह बनते हैं? ईमान से। क्या कभी खुदा ने कहा कि मेरे लिए ज़मीन को जो तो फिर मैं तुम्हें रासबाज कहूँगा? हरगिज़ नहीं। रासबाजी खुदा की तरफ से तोहफा है। और इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल पदायश की किताब उसके 15वें बाप में हमें मिलती है, 12वें बाप में मिलती है। इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए क्या ठहरी? रासबाजी। आगे फिर सवाल करता है, कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यसु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। हमारे गुनाहों को गिनने के लिए? हरगिज नहीं। हमें मुजरम ठहराने के लिए? हरगिज नहीं। किस लिए बैठा है? क्या लिखा है? मसीह यसु जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ इख्तियार की जगह पर बैठा है। क्या करने के लिए? हमारी शिफायत के लिए, हमारी वकालत के लिए, हमारी क्या कहते हैं उन तमाम इल्ज़ामों को जो अबलीस लगाता है, उनको अबलीस के मुंह पर अपने उस मुकम्मल काम का क्या कहते हैं कि हाथ दिखाने के लिए। अबलीस तू अलतीफ़ पर इल्ज़ाम लगाता है, वो मेरा चुना हुआ बंदा है, दफ़ा हो जा। नहीं, ऐसे नहीं कहता खुदा, लेकिन कह सकते हैं कि चला जा, दूर हो जा। और फिर आगे सवाल पूछता है, सवाल पर सवाल पालूस रसूल करता है, कौन है हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? क्या कोई चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? रुपया, पैसा, गुनाह, झूठ, गलती, खता, या ना यकीन ना देना, या किसी और काम को ना करना? कोई भी चीज़ नहीं। खुदा खुद भी हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो वफादार खुदा है, वो सादकल कौल है, यानी कि अपने वादों में सच्चा है। ये सख्त कलाम है लेकिन सच है, क्योंकि खुदा की ज़ात पाक है, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। अगर खुदा, मिसाल के तौर पर खुदा सच्चा है जो कि है, तो फिर वो झूठ नहीं बोल सकता। क्या लिखा है? कोई भी चीज़, मुसीबत, हरगिज़ नहीं। मुसीबत या तंगी या जुल्म या अकाल या नंगापन या खतरा या तलवार, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ जुदा नहीं कर सकती। जल्दी से हम 37वीं आयत पर जाते हैं। क्या लिखा है? मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। खुदा हमें फतामंद ठहराता है, हम फतामंद की बजाय मुजरम अपने आप को ठहराते हैं। खुदा हमें अपनी दुल्हन कहता है, हम ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं कि हम उससे उसके मुतहद ही नहीं। खुदा हमें अपने बेटे और बेटियां कहता है और इब्लीस हमसे झूठ बोलता है कि तुम दुम हो। खुदा ने हमें सर ठहराया है, इब्लीस हमें दुम बनाने की कोशिश करता है। खुदा ने हमें अपना कहा है, इब्लीस कहता है कि तुम उसके नहीं। इन बातों में सादा तौर पर हमें मुआजना करने की ज़रूरत है कि हमें खुदा की मोहब्बत में फतह से बढ़कर गलबा हासिल है। फतह के साथ साथ उससे बढ़कर गलबा हासिल है। क्यों? पाक रूह ईमानदारों के अंदर रहता है। यही वो रूहानी जंग है जो ज़मीन पर लगी हुई है, जो खून और गोश्त के दरमियान नहीं बल्कि शरारत की रूहानी फ़ौजों के दरमियान, कि वो बार बार हमसे झूठ बोलता है। और किसी का कहना कि अगर झूठ हद से ज़्यादा बोला जाए तो लोग उसका यकीन कर लेंगे। आगे क्या लिखा है? 38वीं आयत फिर कहता है, क्योंकि मुझको यकीन है, पालूस रसूल कहता है, मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यसु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा करेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, फरिश्तों में तमाम फरिश्ते खुदा के फरिश्ते, इब्लीस के फरिश्ता, फरिश्ता लूसीफर खुद भी जो शैतान था फरिश्ता था वो भी जुदा नहीं कर सकता। ना फरिश्ते ना हुकूमतें, दुनिया की कोई भी हुकूमत हमें मार तो सकती है, कत्ल तो कर सकती है, लेकिन हमसे वो हक जो खुदावंद यीशु मसीह में हमें बरकत के तौर पर मिला है छीन नहीं सकती कोई भी। ना फरिश्ते ना हुकूमतें ना हाल की ना इस्तकबाल की चीजें, ना आने वाले जहां की ना मौजूदा जहां की, ना कुदरतें ना बुलंदी ना पस्ती ना कोई और मखलूक, कोई भी मखलूक, कोई भी कुवत, कोई भी ताकत, कोई भी बादशाह उस बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों की खुदा से हमें जुदा नहीं कर सकता। इन बातों पर यकीन करने की ज़रूरत है, इन बातों को जैसे पुराने नामा में पत्थर पर जो कुछ लिख दिया जाता था वो यादगारी रहता था, हमें अपने दिल की तख्तियों पर इन सच्चाइयों को कंधारने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है। अगर आज आपको कुछ और याद ना रहे, सिर्फ इस बात को याद रखें कि हम खुदा के बरगजीदा लोग हैं। मेरे साथ कहें हम, और आप अपना नाम ले सकते हैं, मैं खुदावन का बरगजीदा हूँ। ये सच है, इसे कोई भी बदल नहीं सकता, खुदा भी नहीं बदल सकता, क्योंकि खुदा सच्चा है, खुदा कभी भी झूठ नहीं बोलता। आए हम दुआ करें। कादर मुतलिक खुदा, तेरी वफादारी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू सादकुल कौल है, तू कभी भी तब्दील नहीं होता। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे।